खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए कि उसने हम सबको ये दिन दिया कि हम सब मिलकर उसके हुजूर झुकें और उसकी शुक्रगुजारी करें। सो आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, इस वक्त, इस घड़ी, इस दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं तमाम कलीसिया के लिए, आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदाम खुदा, तमाम दुआओं के जवाब के लिए खुदाम खुदा जो तूने दिया। खासकर खुदाम खुदा तेरा शुक्र करते हैं बहन किरण के लिए, उनकी सारी सेहत याबी के लिए, भाई ताहर के लिए, उनकी सेहत के लिए खुदाम खुदा, और बाकी तमाम बहन भाइयों के लिए जो सेहतियाब हुए हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। सो खुदा बापा, जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से सीखे, हम सब की तरबियत और नसीहत का बायस हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब। हम 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत का ये हिस्सा देख रहे हैं जिसमें पालूस रसूल की दुआ है कलीसियाई ईमानदारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों को इफ़सस शहर में जाकर पालूस रसूल ने कलाम सुनाया, उस शहर में जहाँ पर पालूस रसूल की मनादी के बाद बहुत से लोग यीशु मसीह के खानदान में शामिल हुए, यानी के इस शहर के बुत परस्त लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी बुत परस्ती को और दूसरी तरह की मबूदों की जो इबादत करते थे उसे छोड़ा। तो पालूस रसूल उन ईमानदारों को लिखता है और उनको सिखाता है। जिस हद तक हम देख सकते हैं कि ये खत उस वक्त के लोगों को लिखा गया, आज उसी कुव्वत के साथ हम सब की जिंदगी में भी इसका बहुत गहरा तल्लक है। हमारी जिंदगियों में इसका बहुत गहरा असर और हकीकत पाई जाती है। पर पालूस रसूल की ये दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह में बदले, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, यानी कि इफ़सस शहर के लोग एक वक्त में क्या थे? बुत परस्त थे, एक वक्त में खुदा से दूर थे, एक वक्त में खुदा की इबादत नहीं करते थे। इफ़सस शहर जब हम देखते हैं कदीम दौर के लिहाज से, तो इफ़सस शहर में बहुत बड़ा बुतों का क्या होता था, कारोबार था, बुत बनाए जाते थे, बुतों की इबादत की जाती थी, और इस शहर में बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर को इर्थमस देवी का मंदिर कहा जाता था, जहाँ पर ये औरत थी जो हुसन की देवी थी, जिसे और बहुत से नामों से और बहुत से उसके कामों से पहचाना जाता था। तो उस वक्त के लोग उसकी इबादत करते थे, लेकिन जब पालूस ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने यीशु को कबूल किया। और फिर वो 15वीं आयत में इस बात पर उनको याद दिलाता है, उनके लिए दुआ करता है। और 15वीं आयत में यूं लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान है, पालूस रसूल का सबब या वजह क्या है, वो किस लिए उनके लिए दुआ करेगा, उनके लिए शुक्रगुजारी करेगा, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और कहता है, उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह पर है और सब मकसों पर जाहिर है हाल सुनकर, यानी कि उस वक्त के लोग जो उस शहर में रहते थे, वो दूसरे बुत परस्त लोगों के सामने उनकी जिंदगी जाहर थी, उनकी जिंदगी गवाही थी। जब उन्होंने यीशु मसीह का इकरार किया तो लोग जानते थे कि ये अब इर्थमस देवी की पूजा करने वाले लोग नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, उस पर ईमान रखने वाले लोग हैं, और उनके ईमान का हाल या उनकी गवाही दूसरे तमाम लोगों पर जाहिर थी। उनकी जिंदगी का हाल दूसरे लोगों पर जाहिर था। और पालूस ने जब ये सुना तो वो कहता है 16वीं आयत में, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। यहाँ पर जब हमने कल सीखा था शुक्र करने से बाज नहीं आता, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पालूस रसूल जब ये खत लिख रहा था तो वो कहाँ पर था? किसी को याद है वो कहाँ पर था? कैदखाना में। कैदखाना में क्यों हम इस बात को कह सकते हैं बड़े एतमाद के साथ? अगर हवाला जात कोई लिखता है तो लिख ले, इफिसियों पहला बाब 3 आयत, इफिसियों 4 बाब उसकी 1 आयत, इफिसियों 6 बाब उसकी 20वीं आयत। इन तीनों हवालों में हमें पता चलता है पलूस कहता है, मैं जो कैदी हूँ, मैं जो मसीह का कैदी हूँ। तो पालूस यहाँ पर उनको कहता है कि मैं तुम्हारी बाबत, तुम्हारा हाल मैंने सुना है जेल खाना में, रूमियों की कैद में, और मैं तुम्हारी बाबत, तुम्हारे बारे में शुक्र करने से रुकता नहीं। और मैंने कल आपको एक मिसाल दी थी कि पादरी साहब का इंटरव्यू हुआ और पादरियों को बुलाया गया और सब पादरी अपने घर को लौट गए, लेकिन एक पादरी साहब बैठा रहा। उसने आंधी का, उसने बारिश का, उसने भूख का, उसने धूप का, उसने अलहदगी का, हर तरह की बात का सामना किया। और लोग जो इंटरव्यू लेना चाह रहे थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो, बाकी लोग सब चले गए। आपको याद होगी ये कहानी। और उन दूसरे लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं चले गए, बाकी सब चले गए। और उस पादरी ने क्या कहा कि जहां पर आप मुझे खिदमत करने के लिए भेज रहे हो, वहां पर बारिश भी होगी, भूख भी होगी, मुसीबत भी होगी, परेशानी भी होगी, तो क्या मैं वहां से भी भाग जाऊंगा? और हमने यहाँ पर से सीखा था पालूस जो जेल की हालत में है, मुसीबत में है, परेशानी में, हर तरह का दुख तकलीफ उसने सामना किया, लेकिन वो शुक्रगुजारी करने से रुका नहीं। लफ्ज जो शुक्रगुजारी का यहाँ पर देखते हैं, इसका लफ्ज का मायने जब हम यूनानी जबान में देखते हैं तो इसे यूक्रस कुर्बानी भी कहा गया है, यानी कि शायर बानी की उस रोटी को याद दिलाती है जो यीशु मसीह ने कहा था कि यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। और यहाँ पर पालूस रसूल का नजरिया क्या है? कैदखाना में वो शुक्र कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह को, शुक्र बजा लहा रहा है, खुदा का शुक्र कर रहा है कलीसिया के लिए। हमें पालूस के इस नज़रिए से, इस ज़िंदगी से, इस तरीक़ाकार से सीखने की ज़रूरत है। और वो क्या बात है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है हर हालात में। मैं आपके हालात से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ, जैसे हमारे मुल्क में बीमारी का क्या कहते हैं कि बुखरान आया हुआ है, बीमारी हर तरफ जो डेंगी वायरस की है वो फैल रही है, खाने पीने की कमी हम देख सकते हैं, नौकरी की, कारोबार की कमी देख सकते हैं, लेकिन जिस खुदा की हम इबादत करते हैं उसने कभी भी आपको, आपकी ज़िंदगी में, आपकी हयात में, चाहे वो 4 साल की है, 20 साल की है, 50 साल की है, कभी भी आप अपने घर में भूखे नहीं सोए होंगे। ऐसा ही है कि नहीं? वो खुदा हमें सब कुछ मुहैया करता है। सो हमारे पास बहुत सी वजूहात है कि हम शुक्रगुजारी करें, और ये ईमानदारों का सोचने का तरीका कार होना चाहिए शुक्रगुजारी। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बीमारी से सेहतयाब हुआ। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि ये बीमारी अगर मेरी जिंदगी में आई है तो तेरे जलाल के लिए है। पालूस रसूल अपने सारे हालात में खुदा का शुक्र करता है क्योंकि वो इस राज को जान पाया। कि शुक्रगुजारी मसीही जिंदगी का सबसे बुनियादी, क्या कहते हैं, थंबा है, या जिसे कह सकते हैं बुनियाद है। हम सबको भी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, और शुक्रगुजारी से बाज आने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत नहीं, हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है और करते रहने की जरूरत है। ये हमारा रवैया होना चाहिए, ये हमारी आदत बन जानी चाहिए हर रोज। और यही बात पालूस यहां पर सिखाना चाहता है कि मैं शुक्रगुजारी से बाज नहीं आता। और कल मैंने ये सवाल पूछा था कि कौन सी बात या काम या चीज या मसला या मुश्किल हमारी जिंदगी में है जो हमें शुक्रगुजारी से रोकती है? कौन सी बात है जो हमें खुदा के हजूर झुकने से रोकती है? अबलीस, अबलीस के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो हमको रोक सके। क्यों? क्योंकि खुदा ने उससे ज्यादा कुदरत हमारे अंदर रखी है। काम, बहुत दफा काम हमारे जिंदगी में, हमारी इबादत में, हमारी परस्तिश में, हमारी शुक्रगुजारी में जब खुदा के हजूर करनी होती है, काम बहुत दफा रुकावट का बायस बनते हैं। आप सब जानते हैं मैं कौन क्या बात कर रहा हूं। ये आपका ही मसला नहीं, मुझे भी बहुत दफा इन तमाम मसलों का सामना है। इसलिए हमें हर रोज शुक्रगुजारी, बिना नागा शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। चाहे कोई भी मसला हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी बताता हूं, ये सच्ची कहानी है। बहुत साल पहले एक पादरी साहब था जो कलाम को नए अहदनामे से लेकर पुराने अहदनामे तक उसने बहुत ज्यादा बयान किया, और उसकी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान नहीं था, जिसे कह सकते हैं वो अंदरूनी तौर पर खुश नहीं था। एक दिन वो पादरी साहब बाजार में निकले, बाजार से वो बगीचे की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर उसने एक भीख मांगने वाले को देखा, और पादरी साहब ने सोचा चलो इस भीख मांगने वाले से, इस भूखे से, इस नंगे से, जिसके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं है, चलो इससे बात करते हैं, इसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो पादरी साहब उस भीख मांगने वाले के पास गए, उनसे कहने लगे कि खुदा तुझको बरकत दे। और उस मांगने भीख मांगने वाले के जवाब क्या था? उसने कहा कि खुदा ने कभी मुझ पर लानत नहीं की। पादरी साहब ने कहा कि तुम्हारा दिन, आज का दिन अच्छा गुजरे। उस भीख मांगने वाले ने जवाब में कहा कि मेरा कोई भी दिन बुरा नहीं गुजरता। पादरी साहब ने कहा कि तू कौन है? उस भीख मांगने वाले ने कहा कि मैं बादशाह हूं। पादरी साहब ने कहा कि तेरी बादशाही कहां पर है? भीख मांगने वाले ने कहा कि मेरी बादशाही मेरे अंदर है। और उस भीख मांगने वाले ने उस पादरी साहब से कहा कि जब धूप निकलती है तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब बारिश होती है मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब मेरे पास रोटी होती है मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब मेरे पास रोटी नहीं होती मैं खुदा का शुक्र करता हूं। और जब ऐसा रवैया उसने, उस पादरी साहब ने उस भीख मांगने वाले से सुना, तो उसने उस हकीकत को जाना कि हमारी जिंदगी, जब हम खुदा के शुक्रगुजार होते हैं हर हालात में, वो बरकत देता है। तो पालूस की जिंदगी में ये रवैया था, वो हर हालात में शुक्रगुजार रहा। और दूसरी बात हमें पालूस की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। पालूस ने ये बातें किससे सीखी? यसु मसीह से। आप सबको याद होगा यसु मसीह जब भी रोटी को तोड़ता है तो कहता है ए बाप तेरा शुक्र हो। जब भी यसु मसीह कोई मौजदा करता है उसके बाद क्या कहता है? ए बाप तेरा शुक्र हो। जब यसु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो क्या कहा यसु मसीह ने? ए बाप तेरा शुक्र हो कि मैं जानता हूं कि तू मेरी दुआओं को सुनता है। पालूस रसूल ने ये बात यसु मसीह से सीखी। हम ये बात यसु मसीह से, पालूस से, दूसरे शिगिर्दों के से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने लबों को खोलने की जरूरत है, कोई बड़ा बोझ उठाने की जरूरत नहीं। और फिर दूसरी बात, पालूस कहता है, अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। पालूस ने दुआओं का तरीका कार, दुआ का नकल कहाँ से सीखी? यीशु मसीह से। हम आगे चलकर सीखेंगे यीशु मसीह की दुआया जिंदगी के बारे में, कि यीशु मसीह रात के वक्त, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, सारी सारी रात वो अकेला दुआ में गुजारता था। और इसी बात ने शागिर्दों को भी क्या किया, उनके दिलों में ख्वाहिश को पैदा किया। इसका एक नमूना देखना चाहते हैं मेरे साथ, निकालें लूका की इंजील उसका 11वां बाप, के पालूस क्यों दुआ को ज्यादा अहमियत देता है, पालूस क्यों खुशखबरी, खुशशुक्रगुजारी को अहमियत देता है, क्योंकि उसने ये बातें यीशु मसीह में देखी, उसने ये बातें यीशु मसीह की जिंदगी में से सुनी। तो पालूस अपनी दुआओं में कलीसिया को याद रखता है। सो लूका की इंजील उसका 11वां बाप, उसकी पहली आयत को देखें, गौर से सुने। बस ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह किसी जगह पर दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शिगिर्दों में से एक ने उससे कहा, उसके शिगिर्दों में से किसी नामालूम शिगिर्द ने, उसका नाम नहीं बताया गया, उसने क्या कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। जैसे बेटी अपनी माँ को जब आंडे या मुर्गी या दूसरी सब्जी पकाती देखती है तो वो ख्वाहिश करती है कि अम्मी मुझे भी हांडी पकाना सिखा। जैसे लाला जी जब जमीन को तैयार करते हैं, तबस्सम के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अबू मुझे बताओ कि किस तरह कनक या मकई या झोने के बीज को बोना है। इसलिए आपकी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से आपके बच्चे, आपके घराने, आपके पड़ोसी, इर्द गिर्द के लोग सीखते हैं, चाहे हम इस बात का यकीन करें या ना करें, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी से जब यीशु मसीह दुआ करता था, उसके शागिर्दों ने सीखा, उनके दिलों में ख्वाहिश पैदा हुई, और उसने उन्होंने कहा कि यीशु मसीह हमें भी दुआ करना सिखा, जिस तरह यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं। इसलिए आपको अपनी दुआ, अपने लिए दुआ करने की जरूरत है। आपकी कोई ना कोई आयत का चुनाव करें। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरी दुआ क्या है, जो मैंने कलामे खुदा में से, मेरी और मेरी बीवी कैरी की दुआ है ये, हम हमारी अपनी जात के लिए। पालूस रसूल दुआ करता है दूसरों के लिए, शुक्रगुजारी करता है दूसरों के लिए, और मेरी बीवी कैरी की दुआ क्या है, आप इसे देख सकते हैं इमसाल 30वां बाप, उसकी उसकी 7वीं आयत। पुराने अहदनामा में इस आयत को आप सुन सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट बाकी है। इमसाल 30वां बाप उसकी 7वीं आयत में ये दुआ मेरी और मेरी बीवी की हमने अपने लिए मुकरर की है कि खुदावन तू हमें ऐसा बना, हमारी ये दुआ है। सुने मेरी दुआ, मैंने तुझसे दो बातों की दरख्वास्त की है। यहाँ पर याफा का बेटा यूरा का ये पैगाम है, वो खुदा से बात कर रहा है, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी में लेता हूँ इस तरह। मैंने तुझसे दो बातों की दरख्वास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। दूसरे लफ्जों में खुदावंद, मैं तेरे तो दो गल्ला दी दरख्वास्त की थी, या मेरे मरण तो पहले उन्होंने मेरे तो दूर ना करें, बतालत और दर्द गोई को मुझसे दूर कर दे, यानी के बतालत और दर्द गोई को मुझसे दूर कर दे, और मुझे ना कंगाल कर ना दौलतमंद कर, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे, ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर। जैसे हम दुआए रबानी में पढ़ते हैं, आपको याद होगा यीशु मसीह ने सिखाया था, जिस तरह हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे, यही मेरी दुआ है, खुदावंद मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे, ऐसा ना हो कि मैं अमीर होकर, शेर होकर, ज्यादा पैसा हासिल करके इनकार करूं कि खुदावंद कौन है, और मबादा मोहताज होकर, यानी के गरीब हो जाऊं और चोरी करूं और कहूं और खुदावंद अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं, यानी के बेइज्जती करूं, ये मेरी दुआ है। मेरी बीवी की दुआ है कि खुदावन हमें दौलत, दुनिया की दौलत से दौलतमंद ना कर, बल्कि हमारी जरूरत के मुताबिक हमें रोटी दे, ताकि ऐसा ना हो कि हम तुझे भूल जाएं। पालूस रसूल की दुआ क्या है, आगे चलकर हम आज इस इतवार की इबादत में देखेंगे। इसलिए आप भी खुदा के हजूर दुआ करें, अपने लिए कोई ना कोई आयत मुकरर करें, खुदा के साथ कोई ना कोई वादा जो खुदा ने किया है उसे याद करें। जैसे खुदा ने कहा है यशवा को कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझे हौसला और कुव्वत दूंगा। जैसे यर्मिया नबी से खुदा ने वादा किया था, मैंने कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया है, तुझे किसी से जर नहीं पहुंचेगा। आप खुदा से बड़ी दलेरी से बात कर सकते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में दो चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दें, शुक्रगुजारी और दुआ। खुदावन तेरा शुक्र हो तमाम हालात के लिए, चाहे बीमारी है, चाहे औलाद नहीं है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे बारिश है, चाहे भूख है, चाहे परेशानी है। खुदावन तेरा शुक्र हो, फिर देखें कि खुदावंद कैसे आपको बरकतों से मालामाल करता है। दुआ, खुदावन मेरी दुआ है मेरे खानदान के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, मुझको बदल, मुझको इस्तेमाल कर, मुझको दुनिया का नूर बना, मुझको जिंदगी की रोशनी बना, मुझको हौसला फजाई का बायस बना। मैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, अपने अब्बू के लिए, अपनी बहन के लिए, दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है। सो आए हम खुदा के हजूर झुकें और उसका शुक्र करें अपने तमाम हालात के लिए। आप आज जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, किसी ना किसी मसला, बीमारी, परेशानी, मुश्किल का सामना है, सो आए उन तमाम मुश्किलात के लिए कहें कि खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तू हमसे ज्यादा बेहतर जानता है जी जो भी मसलों से हम गुजर रहे हैं। और हम दुआ करेंगे, खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो तेरे अजीम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जिनके लिए तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तेरा शुक्र हो। खुदावंद इनको दुनिया का नूर बनाकर मुल्के पाकिस्तान की बेदीन दुनिया में, बेदीन लोगों में, बेदीन जमाने में कसरत से इस्तेमाल कर, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। भाई ताहर के लिए, लाला जी के लिए, भाई मुबारक के लिए, भाई क्रिस के लिए, भाई रिजेश के लिए, भाई राजू के लिए, भाई अरसलान के लिए, तमाम टीचरों के लिए, काशी के लिए, तमाम नौजवानों, लड़कियों, लड़कों के लिए, बहनों, भाइयों के लिए, खुदावन तेरी बरकत, तेरा कुदरत, तेरा जोर वाला हाथ चाहता हूँ। इनके दिलों की आंखों को खोल दे, जैसे तूने उस वक्त उस पहाड़ पर अलीशा की दुआ को सुना और उनकी आंखों को खोल दिया। खुदावंद हमारी दिलों की आंखों को रोज पर रोज खोल, ताकि हम जाने कि हम कितने मुकद्दस लोग हैं, और उस कुदरत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उस नाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें जो तूने हमें बख्शा है। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।